ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता है जरूरी। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार कठोरतापूर्वक प्रस्तुत होगी, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। संघीय संसद के नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान में राष्ट्रपति भंडारी की ओर से रात्रि भोज हुआ आयोजित। स्वदेशी निजी क्षेत्र के निवेश में तैयार हुई देश की सबसे बड़ी 86 मेगावाट की सोलू दूधकोशी जल विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली जुड़ गई राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली में। और टर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण महज सीरिया में 50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का कथन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता जरूरी है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि भ्रष्टाचार राज्य विरोधी अपराध है, इसलिए इसके नियंत्रण की दिशा में राज्य के सभी निकायों को काम करना होगा। मौके पर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार पूरी कठोरता के साथ प्रस्तुत होगी। उन्होंने सरकारी निकायों को निर्देश देते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार को लेकर शून्य सहनशीलता अपनाते हुए नागरिकों को सेवा मुहैया कराने में जिम्मेदार होकर प्रस्तुत हों। प्रधानमंत्री प्रचंड ने आगे कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी आधारभूत सेवाओं से लेकर राष्ट्रीय परिचय पत्र, नागरिकता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, लगायत प्रशासनिक सेवाओं को सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने को लेकर सरकार संवेदनशील है। कार्यक्रम में अख्तियार के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय ने कहा कि सरकारी कोष से नियमित अनुदान लेने और महज कागजी रूप में संचालित दिखाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए आयोग योजना के तहत काम कर रहा है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संघीय संसद के नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान में आज रात्रि भोज का आयोजन किया। आम चुनाव 2079 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा के सांसदों के सम्मान में राष्ट्रपति भंडारी ने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में रात्रि भोज का आयोजन किया है। रात्रि भोज से पूर्व राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित समारोह में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के कलाकारों ने हिमालय, पहाड़ और तराई के विभिन्न क्षेत्रों की कलात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रसभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हा उपस्थित थे। इसी तरह कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्रियों, उप प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, संवैधानिक निकायों के प्रमुखों, संघीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के साथ ही सुरक्षा निकायों के प्रमुखों और नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों की सहभागिता रही। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि माओवादी पार्टी क्रमशः एकता और रूपांतरण की प्रक्रिया में है, इसलिए पार्टी का भविष्य उज्जवल है। आज दोपहर पार्टी मुख्यालय परिसटाणा में नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं को जनहित में काम करके देश को अच्छा परिणाम देना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के नीति, कार्यक्रम और बजट में दलितों की मांगों को संबोधित किए जाने को उच्च प्राथमिकता दी जाए। नेकपा एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति की राष्ट्रपति बनना चाहिए। आज विराटनगर विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत में वरिष्ठ नेता खनाल ने कहा कि कोई स्वतंत्र व्यक्ति राष्ट्रपति की गरिमा को नहीं संभाल पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि संविधान द्वारा परिकल्पित मापदंड के अनुसार योग्य राजनीतिक व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए तो सहमति बन सकती है। ये बताते हुए कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने के बारे में पार्टी ने कुछ सोचा नहीं है, वरिष्ठ नेता खनाल ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी वर्तमान सरकार में सहभागी नहीं होगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि जनता के समस्याओं के समाधान के लिए सरकार विशेष कार्यक्रम लाने की तैयारी कर रही है। आज नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश द्वारा दांग के भालुवांग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री शर्मा ने कहा कि आगामी वर्ष की बजट में जनता को परिवर्तन की अनुभूति देने के हिसाब से विशेष कार्यक्रम लाए जाएंगे। मंत्री शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय सहमति जुटाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को सरकार में समावेश करने के विषय पर भी विचार विमर्श कर रही है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय सदस्य प्रकाश मान सिंह ने कहा कि देश में मजबूत गठबंधन जरूरी है। आज नेपाल प्रेस यूनियन दांग द्वारा गोराही में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता सिंह ने कहा कि राजनीतिक स्थायित्व संघीयता लगायत उपलब्धियों के क्रियान्वयन और देश के हित के लिए मजबूत राजनीतिक गठबंधन होना चाहिए। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने निर्देश किया है कि स्वीकृत दरबंदी के अनुसार ही कर्मचारियों को काम दिया जाए। निजामती कर्मचारी प्रशासन में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने 7 दिन के अंदर दरबंदी के तहत ही कर्मचारी को काम पर लगाने का सभी मंत्रालयों आयोगों और सचिवालयों को निर्देश किया। निजी क्षेत्र के स्वदेशी निवेश से सोलुखुम्बु में तैयार हुई देश की सबसे बड़ी 86 मेगावाट क्षमता की सोलु दूधकोशी जल विद्युत परियोजना की बिजली को राष्ट्रीय प्रसारण लाइन में जोड़ा गया है। बता दें कि हाइड्रो वेंचर प्राली द्वारा सास ऊर्जा कंपनी लिमिटेड के 100% निवेश पर निर्मित इस परियोजना ने पिछले हफ्ते से परीक्षण उत्पादन शुरू किया था। सास ऊर्जा लिमिटेड के अध्यक्ष हिम पाठक ने बताया कि सभी उपकरणों का परीक्षण सफल होने के बाद इसे नेपाल विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली में जोड़ा गया है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि कला साहित्य और संगीत ने समाज रूपांतरण में सशक्त भूमिका निर्वाह करती है। आज काठमांडू में एकीकृत समाजवादी निकट राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक महासंघ समाजवादी की चौथी पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि संगीत और साहित्य क्षेत्र नागरिकों में उत्प्रेरणा और उत्साह प्रदान करने में केन्द्रित होनी चाहिए। सरलाही में अतिक्रमण के मद्देनजर नेपाल भारत सीमा नाकों में अनुगमन को तीव्रता दी गई है। प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव के नेतृत्व में जिला स्थित सुरक्षा निकाय के प्रमुख लगायत की टोली ने सीमा क्षेत्र का अनुगमन किया। सहायक प्रमुख जिलाधिकारी हरिप्रसाद अधिकारी ने बताया कि पूर्वी नाका परसा गांव पालिका स्थित संगामपुर से खुटौना तक की सीमा क्षेत्र का अनुगमन किया गया है। अर्घखांची और तनहों में हुए अलग अलग सवारी दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। अर्घखांची पाणिनी गांव पालिका में एक ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से स्थानीय 18 वर्षीय हुम बहादुर कुमार की मौत हो गई। इसी तरह पृथ्वीराज मार्ग अंतर्गत तनहों की आबो खैरेनी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 में बस की टक्कर से 40 वर्षीय मीन बहादुर बिग की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि टर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण 50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो सकते हैं। राष्ट्र संघ के उच्च आयोग ने कहा कि सीरिया पहले भी तनावग्रस्त था और इस शक्तिशाली भूकंप ने सीरिया को और भी कमजोर बना दिया है। बता दें कि टर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 78,000 के पार हो गई है। अकेले टर्की में ही 21,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जबकि सीरिया में 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा, भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता है जरूरी। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार कठोरतापूर्वक प्रस्तुत होगी, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। संघीय संसद के नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान में राष्ट्रपति भंडारी की ओर से रात्रि भोज हुआ आयोजित। स्वदेशी निजी क्षेत्र के निवेश में तैयार हुई देश की सबसे बड़ी 86 मेगावाट की सोलु दूधकोशी जल विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली जुड़ गई राष्ट्रीय प्रसारण प्रणाली में। और टर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के कारण महज सीरिया में 50 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।